प्राइसलेस वायरलेस सेट की। जिससे वो डायरेक्ट परमात्मा के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार भी वो करा सकते हैं। पवित्रता के शक्ति से ही हमें विश्व में महान कहलाने वाली आत्माओं को भी झुकाना है। जितनी पवित्रता उतनी पात्रता। भविष्य प्रलब्ध पाने के लिए जितनी हमारी पवित्रता की स्थिति श्रेष्ठ होती है उतना ऊंचा प्रलब्ध हमें स्वतः ही मिलता है। जिन्हों की मानसिक पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी है वो सारे क्लब में हीरो का पार्ट बजाते हैं, विशेष पार्ट उनको मिलता है। और जिन्हों की पवित्रता की स्थिति बहुत साधारण होती है वो बहुत साधारण रोल बजाते हैं, नौकर चाकर प्रजा के रूप में उनको जन्म मिलता है। पवित्र जो शब्द है इसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। इत्र पवित्र चरित्र में भी इत्र है शब्द अंतर्निहित। इत्र अर्थात अत्तर सुगंध सेंट। महान पुरुषों के चित्र से दिव्यता की सुगंध आती है, इत्र प्राप्त होता है, प्रेरणाएं मिलती हैं। ऐसे पवित्र आत्माओं से इस संसार में दिव्यता की गंध सदा फैलती रहती है और वो परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनते हैं। इसलिए कहते हैं प्यूरिटी इज अ रियल ब्यूटी ऑफ ए सोल। प्यूरिटी इज अ रियल प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल। प्यूरिटी इज अ रियल पर्सनैलिटी ऑफ ए सोल। Purity is a real security against Maya. Purity makes you flying bird, impurity makes you jail bird. इसलिए संगम युग में किसी भी कीमत पर मुझे अपनी पवित्रता की स्थिति बहुत महान बनाना है, ऊंची बनाना है। आत्मा की जो क्वालिटी है ए ग्रेड बी ग्रेड वो प्यूरिटी पर निर्भर होती है। टॉप क्वालिटी की आत्मा की स्थिति पवित्रता की भी ऐसी श्रेष्ठ होती है। स संगम युग में ब्राह्मण जीवन में अगर हमारी आंख क्रिमिनल होती है तो ब्राह्मण जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वरीय सुखों से, ईश्वरीय खुशी से बहुत दूर स्वयं को अनुभव करते हैं और ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित रहते हैं, उदासी और निराशा के शिकार बनकर रहते हैं। कई कहते हैं ये जो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है, ये मौजों की जीवन मुझे अनुभव नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण केवल अपवित्रता है। चलते चलते किसी आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प चल पड़ता है फ्लैश के रूप में, लेकिन एक भी किसी के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है उससे बड़े भारी चार नुकसान हमें होते हैं, जिसका हम कभी गौर भी नहीं करते। एक संकल्प चलने से चार बड़े भारी नुकसान हमें होते हैं। पहला नुकसान, पहले ही आत्मा कमजोर है लेकिन अपवित्र संकल्प चलते ही शक्तियों का ह्रास होता है, बहुत कुछ शक्तियां नष्ट होती हैं आत्मा के। दूसरा नुकसान, जिस आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है तो अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा को हम मारते हैं, उसको चोट पहुंचती है, उसकी स्थिति नीचे आती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, वो दूसरा नुकसान। और संगम युग में बाबा कहते हैं किसी व्यक्ति के प्रति अपवित्र संकल्प चलना है महा 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 पाप। तो सूक्ष्म पाप का बोझ मेरे सिर पर बढ़ता जा रहा है और मैं चिल्ला रहा हूं योग मुझे सहज नहीं लग रहा है क्योंकि बोझ बढ़ रहा है। तीसरा नुकसान, चौथा नुकसान है एक्सीडेंट, वो अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर मां पर टकरा के हमारे पास रिवर्स आता है, वापस आता है, उससे हम योगाभ्यास सुंदर गहन अनुभव करने से वंचित रहते हैं। चला केवल एक संकल्प, और वो नुकसान हम नहीं पहचानते हैं, उसके कारण ब्राह्मण जीवन का आनंद हम नहीं ले पाते हैं। सारे कल्प में ब्राह्मण जीवन सबसे ऊंचा हीरे तुल्य जीवन है, सतयुग की जीवन भी उसके सामने फीका है। और एक संकल्प अगर मन में चलता है केवल हमें नुकसान नहीं होता है, अनेक आत्माओं को नुकसान होता है। कहते हर एक सितारे में अपनी दुनिया होती है। कौन सा सितारा? वो जड़ सितारा नहीं, हम आत्माओं रूपी सितारे की अपनी दुनिया हर एक की होती है। वो कौन सी होती हैं? सारे कल्प में जितनी आत्माएं हमारे संबंध में आती हैं, रिलेशन में आती हैं, प्रजा के रूप में आती हैं, भक्तों के रूप में आती हैं, जितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में सारे कल्प में आती हैं, वो हमारी दुनिया है। हमारा एक संकल्प अपवित्र चलता है तो उसका प्रभाव उन सब पर पड़ता है, एक पवित्र संकल्प चलता है तो उन सब को आगे बढ़ाने के लिए हम निमित्त बनते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं कल्प वृक्ष के तने हैं, अपवित्र संकल्प अगर मन में चलते हैं तो अपवित्र संकल्प रूपी भोजन उन आत्मा रूपी पत्तों को कल्प वृक्ष के मिलता है और उनों को भी रोग पहुंचता है, वो भी कमजोर हो जाते हैं, वो भी रोगी हो जाते हैं हमारे कारण। इस अपवित्रता माया का श्राप है संगम युग में। किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना यह भी अपवित्रता है। किसी के प्रति मोह होना, लगाव होना, झुकाव होना यह अपवित्रता है। मोह का जो कीड़ा है हमें बहुत पीड़ा देता है। और ये जो मोह का कीड़ा है माया के अनेक रोग आत्मा को लगाता है। फैमिलियरिटी का कीड़ा बहुत हमें पीड़ा देता है। कहीं कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने के पहले मेरी स्थिति अच्छी थी, लेकिन वहां जैसे मैंने शुरू किया जाना, पता नहीं कैसे कैसे संकल्प मन में चलते हैं, कैसे कैसे स्वप्न मुझे आते हैं जो कभी भी जिंदगी में नहीं आए थे। क्या करूं मैं, जाना बंद कर दूं या जाना जारी रखूं? हां भाई बोलो। आयुर्वेदिक का सिद्धांत है, होम्योपैथी का सिद्धांत है, कोई भी कड़ी बीमारी होती है वो पहले बाहर उछलती है और धीरे धीरे खत्म होती है। तो 63 जन्मों की जो बीमारी लगी है आत्मा को, वो होम्योपैथी के बजाय यहां राजयोगापैथी जब शुरू करते हैं तो सारी बीमारी, सारा कचरा, बदबू, गंदगी सब आ जाती है। अच्छी बात है, वरना वो अंदर ही रहेगी। एक क्लींजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे कचरा अंदर से आएगा आत्मा की सफाई होती जाएगी। हमें खुश होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। मुझे एक बात आपके सामने क्लियर करनी है। सतयुग में हमारी 16 कला थी, हम वहां कोई विकर्म नहीं करते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, फिर भी हम नीचे उतरते हैं। क्यों बोलो? हाँ जी, जन्म होते हैं, ठीक है। और शरीर के संबंध में कोई लॉजिकल जवाब दो। सोलह कला शब्द का प्रयोग क्यों किया है? पूर्णिमा के, चंद्रमा के आधार से किया है। 16वें दिन पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण होता है। इसलिए सतयुग में आत्मा संपूर्ण होती है। हाँ जी, जमा का खाता कम होता है। कैसे कम होती है शक्ति?
आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर को आने से ही उसकी शक्तियां यूज होना शुरू।
हमारे मन में सतयुग में केवल दो ही प्रकार के संकल्प चलते थे, आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि होने के कारण हमेशा पवित्र संकल्प चलते थे और दूसरा कर्म करने के लिए संकल्प चलते थे। इसके कारण हम शक्ति थोड़ी थोड़ी यूज करते रहे। मुझे नहाने जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे भक्तों को मिलना है, प्रजा को मिलना है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी थोड़ी थोड़ी यूज करते हैं। तो वो जो यूज करते हैं ना, उससे थोड़ी 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 एनर्जी कम होती है। इसलिए आठ जन्म में केवल दुआएं हमारी यूज हम करते हैं, 16 से 14 तक आते हैं। वही सिलसिला त्रेता युग में रहता है, पवित्र संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प चलते हैं। उसके कारण त्रेता में और दो कला कम होती है, 14 से 12। लेकिन जैसे ही हम द्वापर युग में आते हैं, माया का माइल्ड अटैक आत्मा पर होता है, तो उन दो संकल्पों के साथ और दो प्रकार के संकल्प शुरू होते हैं चलने, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प। इसके कारण एनर्जी यूज करने का रेशो डबल हो जाता है। दो के बजाय चार कला यूज करते हैं हम द्वापर में, सीधा 12 से 8 पर पहुंचते हैं। गाड़ी पुरानी हो गई, पेट्रोल जास्ता खा रही, नई के वेट में पेट्रोल जास्ती पुरानी गाड़ी। ऋषि कलयुग में पहुंचते हैं, माया का सीरियस अटैक होता है, पवित्र संकल्पों का नाम निशान नहीं, हमेशा अपवित्र संकल्प, हमेशा कर्म करने के लिए संकल्प और हमेशा नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प। बहुत एनर्जी यूज होती है, जीरो तक पहुंचती है। बाबा हाथ पकड़ लेता है, बेटा आओ 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 आओ, अब ये पेट्रोल पंप पर जाओ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, पेट्रोल भर दो अपना, एक ही बार चांस मिलता है सारे क्लब में पेट्रोल भरने का। 16 लीटर पेट्रोल भरा था, वो भर दो दोबारा, समझा? अभी मेरी उन्नति हो रही है या नहीं मैं कैसे समझो? संकल्पों को वॉच करने से आपको पता चलेगा। अगर मैं अपवित्र संकल्प चलने से फ्री हो गया, माना द्वापर युग से आगे बढ़ त्रेता युग में पहुंच गया, अगर अभी भी अपवित्र संकल्प चलते हैं तो मेरी स्थिति द्वापर युगी ही है। बहुत सुंदर पवित्र संकल्प चल रहे हैं, माना त्रेता युग से आप गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं, सतयुगी दुनिया की तरफ आपकी स्थिति बढ़ रही है। सारा खेल संकल्प के आधार पर है। संकल्प, कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित है। ये सारा कल्प जो है ये हमारे संकल्पों के आधार से चलता है। हम लीडर हैं इस संसार के, लीड करने वाले, और उसमें भी विशेष अष्टरत्न इस संसार को लीड करते हैं। 8 प्लेनेट आसमान में हैं, ये अष्ट रतन सतयुग में होते हैं, तो उनके पवित्र संकल्प का प्रभाव प्लेनेट पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट करके धरती पर, पशुओं पर, व्यक्तियों पर पड़ता है, तो सारा संसार पवित्र होता है। और जिस समय ये अष्ट रतन गिर जाते हैं, अपवित्रता थोड़ी आने लगती है, उनका संकल्प का प्रभाव सारे संसार पर होता है और सारा संसार गिरावट की तरफ जाता है। भगवान आके केवल ये अष्ट रत्नों को तैयार करता है, अष्ट रत्न तैयार हो गए, माना सारा संसार पवित्र हो गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। ब्रह्मा कुमार मुट्ठी भर ब्रह्मा कुमार है और करोड़ों आत्माएं इस संसार में हैं, ऐसे अशुद्ध संकल्प क्रिएट करते हैं, ऐसे गंदे संकल्प करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और बाबा ने हमें चैलेंज दिया है कि सतयुगी दुनिया जैसा वातावरण आपको इस धरा पर क्रिएट करना है, संभव है? हमारी स्थिति भी अभी हिलचल में होती है, कभी अच्छी कभी नहीं अच्छी। इतना बड़ा काम हमको बाबा ने दिया है, ये संसार के वातावरण को पावन बनाना है। हो सकता है भाई? करोड़ों आत्माएं कितना सोच रहे हैं उल्टा, और हम मुट्ठी भर ब्रह्मा कुमार, वो भी कभी अच्छे कभी नहीं अच्छे। संभव है? पूर्णिमा का एक चंद्रमा आसमान में होता है, सारे धरती के अंधकार को मिटा देता है, हटा देता है, एक ही चंद्रमा। पवित्र का है, पवित्रता प्रकाश है। जितना पवित्रता का प्रकाश हमारा बढ़ता है, ये सारा अंधकार मिट जाता है। चाहे कितनी भी आत्माएं कैसी भी संकल्प करें, अंधकार है वो। अंधकार कोई एनर्जी नहीं है, लाइट एनर्जी है। तो हमारा लक्ष्य हो, मुझे पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति बनाना है, उसके लिए कितनी भी मेहनत मुझे करनी हो करना है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष के थे, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आ गए। इन दिनों की बात है, बाबा बनारस में गए थे। बनारस में जो बाबा का मकान था, उसके घर के पीछे बगीचा था, और बगीचे में बाबा शाम के समय बैठ गए ध्यान में। और जैसे ही ध्यान में बैठ गए तो अचानक ट्रांस में चले गए। और ट्रांस में चले गए, ऐसा अनुभव कर रहे थे, मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूं, उड़ने का आनंद ले रहे थे। उड़ती उड़ती अचानक एक संकल्प आया कि मेरी धर्मपत्नी जसोदा कहां है। केवल संकल्प आया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, खत्म। बाबा चौक, केवल याद। अशुद्ध संकल्प तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बाबा हमेशा ट्रैवलिंग जो करते थे अपने धर्म पत्नी के साथ करते थे। तो प्यूरिटी की निडल इतनी सेंसिटिव है, वो बाबा के तरफ होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी किसी व्यक्ति के प्रति चिंतन चलता है तो फट से वो एरर दिखाती है। ऊपर बाबा के तरफ होना जरूरी है। बाबा मेरा संसार है, तो ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत किया पवित्रता को अपनाने के लिए, इतनी मेहनत किया और आज जो है बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार मधुबन में पवित्रता के स्तंभ के रूप में है, टावर ऑफ प्यूरिटी। टावर माना क्या? स्तंभ माना अच्छल अडोल स्थिति, कोई उसको हिला नहीं सकता है। और स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, लाखों करोड़ों को प्रेरणा देने वाली श्रेष्ठ स्थिति। ब्रह्मा बाबा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, मेरा बाप है। अगर मेरा बाप ऐसी स्थिति बना सकता है श्रेष्ठ, तो मैं भी बना सकता हूं। मेरे सामने रोल मॉडल है, ज्वलंत उदाहरण है। पुरुषार्थ तो उन्होंने किया है। अपवित्रता के पॉइजन को हमें उखाड़कर फेंक देना है। हमें कहां जाना है? कहां जाना है? हां जी, विष्णु की दुनिया में जाना है। विष्णु का नाम विष्णु क्यों पड़ा है? विष्णु, उस आत्मा में अंश मात्र भी विकार का जहर नहीं है, पॉइजन नहीं है, अंश मात्र भी नहीं। शेष शैया पर लेटा हुआ है, शेष रूपी जो नाग है, विकार रूपी नाग है, उस पर लेटा हुआ है, अर्थात उनको उसने पूर्णतया जीत लिया है और वो शेष नाग उसकी सेवा पर हाजिर है। वो केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की भी वो यादगार है, क्योंकि विष्णु वंश में हमें भी जाना है वैष्णव बनकर। विशेष आत्मा किसको कहेंगे? ये विशेष आत्मा है, किस आधार पर कहेंगे? जिसमें किसी भी प्रकार की कमी शेष नहीं है, वो है विशेष आत्मा। विशेषता ही विशेषता उसमें है, कमी कोई है ही नहीं। इसलिए जिसका जितना बड़ा पवित्रता का ताज संगम युग में होता है, उतना बड़ा उसको राजाई का ताज सतयुग त्रेता युग में मिलता है। भविष्य का ताज राजाई का प्राप्त करने का आधार है वर्तमान समय पवित्रता का ताज। कितना बड़ा ताज मेरा पवित्रता का है, उसके आधार से हमें राजाई का ताज मिला है, वो आधार है। तो हमें ऐसी पवित्रता की स्थिति को बनाना है। कैसे बनाना है, उसकी विधि क्या है? सबसे पहली विधि, भाई भाई की दृष्टि, ब्रदरहुड विजन। वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर। वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर। क्योंकि फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म में, चुंबक का जो चैप्टर है उसका प्रिंसिपल है सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अट्रैक्शन होगा। दोनों नॉर्थ हैं तो अट्रैक्शन होगा। मैं मेल और ये फीमेल हैं ऐसा सोचेंगे तो अपोजिट पोल होने से आकर्षित हो सकता है। शुद्ध प्रेम भी अशुद्ध प्रेम में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है, इसलिए उससे हमें ऊपर उठना है। और मैं आत्मा ज्योति बिंदु और ये भी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो ऑटोमेटिक पवित्रता की स्थिति हमारी बहुत अच्छी तरह से बनती जाती है। यह है मास्टर की, पवित्रता की स्थिति को बनाने के लिए मास्टर की है ये। एक बार मैं 700 कुमारों का क्लास ओम शांति भवन में पवित्रता के सब्जेक्ट पर कर रहा था। मैंने ये प्रिंसिपल उनको समझाया, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। क्लास के बाद तुरंत 15-20 भाई बहने आकर मुझे आर्ट गैलरी में पकड़ लिया, ठहरो प्रश्न का जवाब चाहिए, बोलो कौन सा प्रश्न है। सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं तो मैं भी निराकार आत्मा हूं, शिव बाबा भी निराकार आत्मा है, तो दोनों सजातीय होने से रिपल्शन होगा, तो कैसे हम बाबा को याद कर सकेंगे। प्रश्न तो बहुत लॉजिकल है, तो जवाब क्या होगा भाई। मेरे पास जवाब नहीं था, मैंने सीधा बाबा को कहा, बाबा प्लीज गिव मी इंस्टेंट टचिंग, मुझे तुरंत टचिंग चाहिए आपसे। तुरंत बाबा ने दो टचिंग मुझे दिए। आत्मा आत्मा से कंपेयर करते हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन आत्मा की कंपैरिजन परमात्मा के साथ करते हैं तो आत्मा फीमेल हो जाती है, परमात्मा मेल हो जाता है। इसलिए कहते आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। ता मेल के लिए, ती फीमेल के लिए, तो दोनों ऑपोजिट हो गए तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। और दूसरी टचिंग थी, बाबा निराकार राम है और हम सभी आत्मा रूपी सीतजनिया हैं, उसने हमें स्वीकार किया है तो वो साजन है, हम सजनिया हैं, तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। तो जब ये दोनों टचिंग उनके साथ शेयर की तो उन्होंने कहा ठीक है ओके थैंक यू। इसलिए हमें भाई भाई की दृष्टि पक्की करना है कि अपवित्रता का जन्म होता है देह के भान से। जन्म देने वाली कौन है अपवित्रता को? देह का भान। आत्मा का जो बीज है उससे जो झाड़ निकलता है उस पर दिव्य गुणों के फल लगते हैं, और देह भान का जो बीज है उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर विकारों के फल लगते हैं। इसलिए हमें देह के भान के बीज को जला देना है योग की अग्नि में, और ये जो आत्मा रूपी बीज है उसको स्नेह का पानी, पुरुषार्थ का पानी देकर उस जीवन रूपी पेड़ को बहुत फलीभूत करना है, जिस पर दिव्य गुणों के फूल लगेंगे। मेरा जीवन हरा भरा दिव्य गुणों से संपन्न बनता जाएगा। पहली युक्ति। दूसरी युक्ति, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए डेली अमृत वेले एक प्रयोग हमें करना है। कौन सा प्रयोग करना है? जैसे आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मेरे सामने खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? निरारी बाप जो है मुझे अपने ही उंगली से आत्मा का तिलक लगा रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव, स्वयं मुझे तिलक लगा रहे हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारी बच्ची हूं, तो उस तिलक पर और विजय का तिलक, वी शेप का तिलक लगाते हैं बच्चे, विजयी भवा। माया के राज में रहते हुए सदा विजयी स्थिति की अनुभूति करते रहो, वो बाबा मुझे विजय का भी तिलक लगा रहे। बहुत प्यारा बच्चा हूं मैं बाबा का, इसलिए मुझे बाबा मुझ आत्मा को पवित्रता का सागर, पवित्रता का ताज भी मुझे पहना रहे हैं। कौन पहना रहा है? पवित्रता का सागर बाप मुझे पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। लड़की की शादी होती है, एक दिन उसकी सजावट होती है, ताज उसको पहनाते हैं, सारा लगाते हैं, सारा दिन खुशी में झूमती रहती है, दिखाती रहती है सखियों को, ए देखो मेरा ताज, ये देखो मेरा श्रृंगार। एक दिन हंसती है, सारा जिंदगी रोती है। और हमारा जो साजन है हर रोज हमारा श्रृंगार करता है, हर रोज हमें डबल तिलक देता है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहनाता है। कितने लकी हैं हम। तो सारे दिन भर में अगर वो डबल तिलक का और ताज का बांध रहेगा तो पवित्रता की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, ये गारंटी है। क्योंकि भगवान ने आपको वरदान दिया है पवित्रता का, और पवित्रता के अवतार के रूप में इस संसार में भेजा है। बच्चे जाओ कलयुग की दुनिया में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। भगवान ने मुझे भेजा है, किस रूप में भेजा है? पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। कौन सा काम मुझे दिया है? हमेशा पवित्रता की खुशबू इस संसार में फैलाते रहो, ये भगवान ने मुझे काम दिया। लेकिन अगर मैं अपवित्र संकल्प फैलाता हूं तो मैं रावण को मदद कर रहा हूं। हां मैं राम कर रहा हूं और मदद मैं रावण को कर रहा हूं। रावण को रावण क्यों कहते? क्यों कहते रावण? राव प्लस न, वो हमें राव बनने ही नहीं देता है, राजा बनने ही नहीं देता है, रंक बनना बनाता है। बाबा हमें राजा बनाता है और ये हमें रंक बनाता है, रावण बनने ही नहीं देता है, ऐसा राज हमारे पर करता है, ऊपर आने ही नहीं देता है। तो हमें रावण को नहीं मदद करना है, किसको करना है? राम को मदद करना है। पवित्र संकल्प रूपी खुशबू संसार में फैलाना है, ये बहुत बड़ी सेवा है। तीसरी युक्ति, पवित्रता की स्थिति बनाने के लिए हमेशा सोचें कि मेरी जो मां है ब्रह्मा मां, वो है मास्टर पवित्रता की सागर। मेरा जो बाप है शिव, वो है पवित्रता का सागर। और मेरा जन्म जो है ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा हुआ है, मेरा जन्म पवित्रता से हुआ है, तो मैं बच्चा कैसा होऊंगा? पवित्र। बाप मेरा ऐसा, मां मेरी ऐसी, जन्म मेरा ऐसा, तो बच्चा कैसा होगा भाई? पवित्र होगा। मैं वो बच्चा हूं, पवित्र हूं ही पवित्र। तो इतना सहज हो जाते पवित्रता को अपनाने के लिए, बहुत सुंदर ये युक्ति है। मुझे पवित्र बनना है नहीं, मैं हूं ही पवित्र। बाप जैसा बेटा होता है, तो ऐसा सकारात्मक नजरिया हमारा हो तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति सहज हम अनुभव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी युक्ति है पवित्रता की स्थिति को बहुत अच्छी पक्की बनाने के लिए पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठे रहो, जैसा संग वैसा रंग आपको लगता जाएगा, जैसी कंपनी होगी वैसा रंग आपकी आत्मा पर लगता जाएगा। बाबा के पास बैठो, सागर के किनारे बैठेंगे और शीतल आपको नहीं मिलेगी, हो नहीं सकता है। बहुत ठंडी ठंडी लहरें आपके अंग को स्पर्श करेगी। ऐसे पवित्रता के सागर के पर अर्थात समीप बैठ जाते हैं तो पवित्रता की लहरें आपकी आत्मा की ओर आती जाएगी और आपको रंग लगाती जाएगी। बाबा के कंपनी में रहो, बाबा की कंपनी को एंजॉय करो। इज अ बेस्ट कंपेनियन, बहुत सुखदायी उसकी कंपनी है। समझा? और दूसरी युक्ति है जो अंश विकारों के आत्मा में बाकी है उसको मिटाने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को हमें बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि ये जो दाग है अपवित्रता के, मैं इस मुझ आत्मा रूपी हीरे की वैल्यू को घटा रहे हैं। मुझे बेदाग हीरा बनना है। समझा? तो जो भी युक्ति हमें अच्छी लगती है उसमें से अपना के पवित्रता को आगे बढ़ाना है, अपवित्रता को खत्म करना है। Purity is everything, the surety in our action. जितनी पवित्रता बढ़ती है उतनी निर्भयता बढ़ती है, उतना आत्मविश्वास बढ़ता है और जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें श्योरिटी अर्थात सफलता निश्चित है, ये पक्का अनुभव होता है। टी अच्छी लगती है आपको? टी अच्छी लगती है? टी अच्छी नहीं लगती है आपको? भाई सब भाई टी अच्छी लगती है? जाओ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, बहुत ही मिलेगी, प्यूरिटी मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी, बहुत वैरायटी टी है, जाओ भाई। कितने प्रकार की टी है भगवान के इसमें रेस्टोरेंट में? सिक्योरिटी भी मिलेगी। समझा? अभी मेरी प्यूरिटी का स्तर कितना ऊंचा बढ़ गया है ये कैसे जाने? डॉक्टर बीमारी को ढूंढता है तो मैं अपनी पवित्रता की बीमारी को कैसे ढूंढ लो? उसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है सारे दिन भर में मेरे मन में किस प्रकार के संकल्पों का पैटर्न चलता है इसको हमें वॉच करना है, इसको हमें देखना है। अगर अपवित्र संकल्प चलते हैं इसका मतलब आत्मा में अपवित्रता बाकी है। मुझे एक भाई ने वो कमरे में रखा, कमरे में बड़ी बांस आ रही थी मुझे। मैंने कहा भाई ढूंढो कुछ, बांस आ रही है मुझे। तो अविनाश भाई कहता है भाई कुछ है ही नहीं यहां, बांस कहां से आई? मैंने कहा ढूंढो बराबर। तुम बहुत ढूंढा तो कोने में सड़ा हुआ बैंगन का टुकड़ा मिला। सड़ा हुआ बैंगन है तो बांस तो आएगी। तो आत्मा में जो दाग है अपवित्रता के, उससे बांस कौन सी आएगी? अपवित्र संकल्प रूपी बांस आएगी, वो बताएगी कि अभी भी है कचड़ा अंदर। सेंट डालेंगे तो खुशबू निकलेगी, दूसरी उसकी विधि है। जो स्वप्न हमें चलते हैं, उस सपनों को देखकर हमें पता चलता है मेरी पवित्रता की स्थिति कैसी है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं उनका डीप इंपैक्ट जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। अगर नींद में मुझे डरावने स्वप्न आते हैं, अपवित्र स्वप्न आते हैं, भय वाले आते हैं, तो समझ लो अभी भी आत्मा में अपवित्रता बाकी है। और जितनी पवित्रता खत्म होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अपवित्रता खत्म होगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी, तो स्वप्नों में भी सुधार आएगा। संगम युग में के स्वप्न पड़ेंगे, बाबा के बारे में, सत्यु के बारे में बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न पड़ेंगे। सपना पढ़ने बंद नहीं होंगे, लेकिन सपनों की क्वालिटी में सुधार होगा। क्योंकि पवित्र संस्कार हमारे बनते जा रहे हैं, उस पवित्र संस्कारों का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिव है, इसके कारण बहुत सुंदर स्वप्न मुझे पड़ रहे हैं। ये दूसरी उसकी निशानी है। क्या हुआ? ये बीमार पड़ गया, वो डॉक्टर के पास गया, एक कुमार, थोड़ा सा अपसेट था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहता, क्या करते हो तुम? मैं राजयोग का अभ्यास करता हूं। कहां जाते हो? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो, इसलिए तुम पेशेंट बन गए हो। अरे लाइफ को एंजॉय करो ना, ये क्या नेचर से अगेंस्ट जा रहे हो? ब्रह्मचर्य किस लिए जरूरी है? इसलिए बीमार पड़े हो। उसने छोड़ दिया ना, वो डॉक्टर को तो मानेगा ना। अभी ये सुप्रीम डॉक्टर कहता है ब्रह्मचर्य इज नेसेसरी, ऑर्डिनेंस निकाला उसने कि ब्रह्मचर्य पालन करना ही है, कुछ भी हो। उससे आत्मा भी हेल्दी बनती है और शरीर हेल्दी बनता है, ये सुप्रीम डॉक्टर कह रहा है, ये दुनिया भी डॉक्टर नहीं। क्योंकि वो तो 63 जन्मों की बीमारियों से हमें मुक्त करता है, ये तो कोई छोटी मोटी बीमारी। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर में ब्रह्मचर्य की शक्ति जमा होती है, उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को ऊर्ध्वरेता की रीति से हमें ट्रांसफर करना जरूरी है। हम जब योग करते हैं, हमारे संकल्प ऊपर की ओर चलते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, तो ये जो मन में संकल्प चलने के लिए ऊर्जा चाहिए वो ब्रह्मचारी शक्ति से हमें मिलता है। तो फिजिकल एनर्जी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफर होती है, कन्वर्ट होती है, और फिर वो पवित्र वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैलाने में मदद करती है। और जितना उस शक्ति को हम ट्रांसफर करते हैं, हमारे चेहरे पर वो पवित्रता की चमक ऑटोमेटिक दिखाई देती है। उसको हमने ट्रांसफर किया, समझा क्या? तो चेहरा भी हमारा नूरानी चेहरा बन जाता है। लोगों के चेहरे देखो, उजड़े हुए चेहरे मिलेंगे, खुशी मुश्किल से देखने के लिए मिलेगी। और बाबा के बच्चों के चेहरे चे हरा हरा भरा होगा, सूखा नहीं होगा। सुख तो है नहीं तो सुखा ही हो गया ना, सुख ही नहीं पर तो सुखा हो गया। और हमारा चेहरा एकदम हरा भरा दिव्य गुणों की खुशहाली है, भरपूरता है, संपन्नता है। पवित्रता की निशानियां क्या है? जैसे जैसे पवित्रता हमारी बढ़ती है उसकी निशानियां क्या है? पहली निशानी है हमारे चेहरे पर पवित्रता की दिव्यता ऑटोमेटिक दिखाई देती है, वो छिपते नहीं है। चेहरे पर थोड़ी सी भी मायूसी होगी हम छिपाएंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में पड़ लेगा, बताओ सचमुच क्या हुआ है, कुछ है तुम्हारे मन में, फिर हम बताएंगे ये भी ये बात हो गई। क्योंकि फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड, वो मन में क्या एरर है वो मिरर बता देता है, छिपा नहीं सकते आप। फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड, जो मन में एरर है वो मिरर स्पष्ट दिखा देता है। डॉक्टर फट से पहचानता है इसका ये बीमारी है, ये तकलीफ है, हार्ट काम नहीं करता है, लंग्स काम नहीं करता है। तो ऐसे चेहरा भी बोल देता है कि भाई ये बीमारी है तुम्हारी। इसलिए कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। दूसरी निशानी है पवित्रता की स्थिति जितनी जितनी अच्छी होती है हमारा चित्त में अनुपम शांति होती है, मानो काम अग्नि बुझ, काम अग्नि बुझ गए, चित्त की वृत्ति अशांत रहती है। और योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव हमें होते हैं। तीसरी निशानी, जैसी जैसी हमारी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती है संतुष्टता की निशानी हमारे जीवन में दिखाई देती है। काम ना, काम का विकार ना माना कोई कामना नहीं होगी, संतुष्टता होगी। मुझे सब कुछ मिल गया, प्राप्तियों का भंडार मिल गया, कोई दुनिया की कामना नहीं मुझे, संतुष्ट मणि मैं आत्मा हूं। चौथी निशानी है ईर्ष्या द्वेष ढूंढकर भी उसमें नहीं मिलेगा। ईर्ष्या होना, द्वेष होना, यह अपवित्रता की निशानी। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होना, यह संपूर्ण पवित्रता की निशानी। जैसे नदी की धारा बहती जाती है, उसका जीवन है बहना, डाकुआएं तो भी सेवा कर रहा है, साधुआएं तो भी सेवा में बह रही है वो नदी, ऐसे पवित्र आत्मा है, सबके साथ व्यवहार उसका एक समान होता है, द्वेष ईर्ष्या खत्म होती है। और मान शान मुझे मिले, छोटी चीज लगती है मान शान, कोई मुझे मान शान दे, कोई जरूरत नहीं है। भगवान से मुझे सम्मान मिल रहा है, आत्मा से मान मिले मुझे कोई आश नहीं, कोई प्यास, छोटी चीज है वो। आपको कोई छोटी चीज देंगे स्वीकार करेंगे? मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं और छोटी सी चीज दे रहा है, मान शान छोटी चीज लगती है। दूसरी निशानी है पवित्रता की स्थिति जैसी आगे बढ़ती है, ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय सुख जो है, ईश्वरीय खुशी नेचुरल होती है, उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, झूठा मोटा चेहरे पर स्माइल लाते हैं, लोग देखें मेरा चेहरा होगा और मुरझा हुआ होगा तो कहेंगे क्या है, हो गया इसको, थोड़ा नकली चेहरा मुस्कुराकर। अब नकली चेहरा कब तक मेंटेन करेंगे भाई, आखिर तो वो तो हो गए ना, नाराजी खुशी ना खुश। फोटो निकालेंगे, ठहरा ठहरा ठहरा, अच्छा अभी निकालो। तो ईश्वरीय नसी हमारे जीवन का नेचर बन जाता है। अपवित्रता खुशी को गुम कर देता है, नशे को कम कर देते हैं, लेकिन पवित्रता बढ़ाती है, नेचर हमारा बन जाता है। तो ऐसी पवित्रता की स्थिति को बनाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना है हर रोज के भोजन पर। सीधी बात है, अपवित्र आत्माओं के हाथ का भोजन स्लो पॉइजन का काम करता है। उस समय उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे 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 उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और हमारी रुचि ज्ञान और योग में कम होते जाती है और हम बाबा से दूर होने लगते हैं। क्योंकि भोजन एक माध्यम है, जब योग युक्त भोजन बनाते हैं तो उसमें योग की शक्ति भर जाती है, जो उसको खाता है वो शक्ति मिलती है। अगर उसमें अपवित्र संकल्प समा जाते हैं कण कण में तो वो उसका प्रभाव डाले बिना नहीं रहता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छी स्थिति में बनाया हुआ भोजन ही स्वीकार करना है। बाहर गए हम टूर पर जाते हैं, कभी थोड़ा ढीला हो जाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार तो खा लिया, हमेशा थोड़ी खा रहा हूं। लेकिन अगर स्थिति बनाने की इच्छा आपके मन में प्रबल है तो उससे आपको दूर रहना जरूरी है। वो प्रभाव जरूर डालता है। समझा? तो इस रीति से पवित्रता की स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। कंप्लीट प्यूरिटी का अर्थ क्या है? संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरे नैनों में, मेरे दिल में केवल एक बाप हो, दूसरा कोई न हो, यह है संपूर्ण पवित्रता की निशानी। मुझे किसी के तरफ आकर्षण नहीं है और किसी को मेरे तरफ आकर्षण नहीं है, यह है संपूर्ण पवित्रता की निशानी। मुझे किसी के तरफ आकर्षण नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी को अगर मेरे तरफ आकर्षण है ये भी अपवित्रता, ये मेरी कमजोरी है। क्योंकि मेरा पवित्रता का प्रकाश इतना प्रखर नहीं है जिसके अपवित्रता के अंधकार को मैं मिटा दूं। इसलिए प्रभावित होने वाला प्रभावशाली नहीं बन सकता है। किसी पर भी मुझे प्रभावित होने नहीं है, आकर्षित नहीं होना है। आकर्षित होने वाला आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता। मेरा कौन है संसार? आप विदेशों में जाएंगे ना तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, कई एकरों में शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सुई से लेकर कार तक बड़ी से बड़ी चीज एक ही जगह मिलती है। और हमारे भारत में क्या है, 10 चीजें खरीदनी होगी तो 10 दुकानों पर धक्के खाने पड़ेंगे, टाइम भी वेस्ट और एनर्जी भी वेस्ट। अभी मेरा शॉपिंग सेंटर कौन है भाई? मेरा शॉपिंग सेंटर ये है बाबा। मैंने अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया, बहुत भटकाया। अभी मुझे अपनी बुद्धि पर रहम करना है, ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बैठना है और सर्व प्राप्तियों के भंडार से जो मुझे चाहिए वो प्राप्त करना है। क्योंकि थोड़ा भी रास्ता भटका तो लगा माया का फटका। माया तैयारी है फटका मारने के लिए। थोड़ा भी रास्ता भटका तो लाया लगा माया का फटका। ट्रैफिक में थोड़ी कार इधर उधर चलाएंगे तो पीछे वाला आके गुस्सा करेगा, कार भी चलाना नहीं आता है, क्यों चला रही है। तो माया भी ध्यान रखती है, जो हमारा रास्ता बाबा ने दिया है उसको थोड़ा भी भटक जाते हैं ना तो माया छोड़ती नहीं, पकड़ लेती है। समझा? इसलिए कहते हैं जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये काया जो है ना ये माया की प्रॉपर्टी है, पांच विकारों की, पांच तत्वों की प्रॉपर्टी है। ईश्वर की प्रॉपर्टी कौन सी है भाई? छाया बहन, आत्मा समझना, ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। ईश्वर की प्रॉपर्टी का बांध रखेगी तो ईश्वर आएगा, अब माया की प्रॉपर्टी याद करेगी तो माया आएगी। अब जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो तो नहीं आएगा क्या, छोड़ेगा क्या? तो ईश्वर की प्रॉपर्टी है मैं आत्मा हूं, माया की प्रॉपर्टी क्या है? साहू भाई, मैं काया हूं। इसको भूल जाओ, इस प्रॉपर्टी को याद करो तो ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा। ठीक है ना? अभी किसी का प्रश्न है इसके बारे में, अब पवित्रता की स्थिति के बारे में हो कोई भी प्रश्न तो बोलो। कोई भी प्रश्न अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई प्रश्न हो तो बोलो तो हम क्लियर करें। अभ्यास की बात है, क्लियर आपके सामने कंसेप्ट हो जाता है तो अभी अभ्यास करना, उस पर हमें चलना जरूरी है। जितना जितना चलते हैं उतना ब्रह्मा बाबा के समान हमारी स्थिति भी पवित्रता की स्तंभ के रूप में अचल अडोल बनती है। बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति लगाव भी मोह कहेंगे और वो भी अपवित्रता ही है, पांच विकार का तो अंश हो गया ना। बच्चों के प्रति प्यार हो, देखो सबके प्रति समान प्यार होना ये दिव्य गुण है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, एक से हैं दूसरे से नहीं हैं, ये तो पार्शियलिटी हो गई। सबके साथ समान स्नेह ये दिव्य गुण है, लेकिन किसी विशेष से स्नेह होना ये है मोह। विकार बोलते हैं ना, विकार क्या चीज है, काम विकार क्या चीज है। डॉक्टर के पास बीमार जाता है, डॉक्टर क्या करता है भाई, टीबी पेशेंट गया तो कहेंगे टीबी के जर्म्स को खत्म करने की दवाई ये लो, फिर कमजोरी को दूर करने के लिए ये भी थोड़ा टॉनिक, ये भी विटामिन की गोलियां खाओ। कमजोरी दूर करने के लिए शक्ति देगा और वो जर्म्स को मारने के लिए दवाई देगा। तो बाबा क्या करते हैं, कमजोरी हमारी कौन सी है, कोई ना कोई विकार जो है किसी ना किसी दिव्य गुण का अभाव है। विकार कोई चीज नहीं है, काम विकार क्या चीज है, पवित्रता के दिव्य गुण का अभाव है, पवित्रता का प्रकाश कम होता है तो काम का अंधकार उस पर छा जाता है, ऑटोमेटिक छा जाता है। काम क्रोध, क्रोध क्या चीज है, शीतलता का गुण जो है उसका लाइट कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है तो क्रोध छा जाता है। तीसरा विकार लोभ, लोभ क्या चीज है, संतुष्टता का गुण का अभाव है लोभ। मोह क्या चीज है, सबके साथ समान प्यार होने का गुण जब कमजोर हो जाता है तो फिर क्या आता है, मोह। अहंकार, किसी भी चीज का अहंकार हमें होता है, वो अहंकार क्या चीज है, नम्रता के गुण का जो अभाव है वो अहंकार का अंधकार छा जाता है। तो क्या करना है, किसी न किसी दिव्य गुण का जो अभाव है उस गुण को हमें धारण करना है और बाबा से एनर्जी लेना है, शक्तियां लेना है योग के द्वारा, तो फिर ये जल्दी बीमारी मुक्त हो जाएगी। डबल ट्रीटमेंट लेना है, इस कमजोरी को हटाना भी है और बाबा से एक्स्ट्रा शक्ति भी लेना है। व्यर्थ संकल्पों को कैसे समाप्त करें, बाबा ने पिछले सीजन में 2-3 बार इशारा दिया, व्यर्थ को अभी समाप्त करो। क्यों, क्योंकि व्यर्थ ये लीकेज है, म्युनिसिपल से पानी के टाकी में पानी आ गया सवेरे, लेकिन बच्चा थोड़ा नल खोल के हल्का सा चला गया, आप भी अपने ऑफिस में चली गई, बच्चा स्कूल में गया, शाम को आया पानी में ताकि में पानी नहीं है, पानी तो आया था लेकिन लीकेज होके बह गया। तो ये लीकेज, एक तरफ तो शक्तियां लेते जा रहे हैं लेकिन ये लीकेज के द्वारा शक्तियां वेस्ट भी होती जा रही हैं, जमा का खाता हो ही नहीं रहा है। तो व्यर्थ को समाप्त करने की 3 तरीके हैं।
Yeah।
व्यर्थ को समाप्त करने के लिए तीन युक्तियां हैं। पहली युक्ति है जब भी किसी से मिलते हैं उनके ब्रुकुटी में हमें बिंदु रखना है, देखना है, फुल स्टॉप लगाना है। पहले अपने माथे पर फुल स्टॉप बिंदी अर्थात आत्मा देखना है और जो सामने आता है उसके प्रति भी हमें फुल स्टॉप लगाना है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो ये भाई का नाम ये है, ये भाई ये करता है, इसमें अच्छाइयां है, ये अवगुण है, बिना मतलब चार पांच संकल्प हमारे यूं ही चल पड़ते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं बिंदु और ये बिंदु, एक बाप के हम बच्चे हैं, फुल स्टॉप लग गया संकल्पों को। यह अभ्यास बढ़ाएं, शक्तियों का फुल स्टॉक करने के लिए फुल स्टॉप लगाना सीखें। दूसरी युक्ति, कोई भी बात आश्चर्य करने वाली आती है या कोई भी इस ड्रामा में ऐसी कोई अप्रिय घटना या प्रिय घटना होती है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प का तूफान उठने लगता है और जो तूफान हमें कहां से कहां उड़ा देता है, हमारी शक्तियां कितनी खत्म करती हैं। इसलिए ड्रामा की बिंदी को लगाना है। जो भी दर्श मेरे सामने आया है ये केवल रिपीटेशन है। इस हॉल में हम बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं, केवल रिपीटेशन है। कोई पहली बार नहीं बैठे, अनगिनत बार बैठे थे इसलिए बैठे हैं और अनगिनत बार बैठते ही रहेंगे। केवल एंड केवल रिपीटेशन है। जब रिपीटेशन ही है, नथिंग न्यू है, तो संकल्प चलने का कोई मतलब ही नहीं। तो ड्रामा की बिंदी को यूज करें, लगाना सीखें। बाबा ने हमें बहुत सुंदर ये दी है, गिफ्ट दी है, ड्रामा की बिंदी लगाओ। तीसरा युक्ति है, मन तो हमेशा सोचता रहता है पानी बह रहा है या आपकी खेती में नुकसान पहुंचा रहा है, उस पानी की धारा को बदली कर दो, अच्छी जगह पहुंचाओ। तो मन में संकल्प जो चल रहा है, व्यर्थ का तो प्रवाह चल रहा है, मनन चिंतन के द्वारा उस प्रवाह को चैनलाइज करो। मन तो सोचता रहेगा, मन का काम है सोचना। अगर आप शक्तिशाली भोजन उसको खिलाते हैं ज्ञान का, तो मन व्यर्थ के बजाय समर्थ सोचने लगेगा और व्यर्थ से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। ये तीसरी युक्ति है। ये तो खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड्स इविल वर्कशॉप। मन को खाली रखो ही नहीं ना, मन को बिजी रखो, कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, मक्खन निकालते रहो, तो समर्थ संकल्पों का प्रवाह आपके मन में चलने लगेगा, व्यर्थ से फ्री। ठीक है, तो अभी थोड़ा पांच मिनट के लिए आप फ्रेश होकर आएंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक चालू करते हैं, मनसा सेवा का। मनसा सेवा का टॉपिक सीखा है, सुना है किसी ने? हाथ खड़ा करो, मेरा कभी सुना है किसी ने मनसा सेवा के बारे में? क्लास सुना है? हाँ, नहीं सुना है ना, तो हम वो क्लास करेंगे। पांच मिनट में, दस मिनट में आप आइए थोड़ा फ्रेश होकर, फिर पुनः वो क्लास शुरू। ओम शांति। दिल्ली में रामलीला मैदान पर सबसे पहली बार हमारा स्पिरिचुअल फेयर होने जा रहा था। आधा मेला बन चुका था, तैयार हो चुका था। अचानक जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भारत की थी, उन्होंने हमें लेटर आ गया कि इस मेले को यहां से हटा दो। क्यों? क्योंकि उस समय रशिया का प्रेसिडेंट जो है भारत को गेहूं देता था, तो उन्होंने कहा भारत रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी हमें यहां करना है। ठीक है, लेटर आ गया। जैसे ही लेटर आ गया, प्रकाशमणि दादी जी ने कहा सारा काम स्टॉप करो, और उसके बाद सभी सेंटरों पर दिल्ली के मैसेज भेज दिया, सभी रात भर तपस्या करो और गवर्नमेंट को सकास दो। और मेले में जो भी 500-700 भाई बहने थे उन्होंने भी सारी रात जाकर बाबा से सकास लेकर सरकार को जो है सकास देते रहे। उस समय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, कुछ गुप्तचर वहां भेजे कि देखो तो सही वहां क्या मेले ग्राउंड पर क्या हो चुका है, क्या तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले दुर्गा देवी का मॉडल ओपनिंग मॉडल तैयार था, अब इस मॉडल को तो हटा नहीं सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे देखा आधा तो मेला बन चुका है इनका। जैसे गुप्तचर ने मैसेज पहुंचा है इंदिरा गांधी के पास तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा। दूसरे दिन 11 बजे हमारे पास लेटर आता है, ठीक है ठीक है अपना मेला आप चालू रखो आगे बढ़ाओ, हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी दूसरे ग्राउंड पर कर रहे हैं। देखो सरकार की मनसा को चेंज करना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे विघ्न को भी सेवा से हटाने के लिए मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात है। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अगर हिम्मत और साहस का दान हमें देना है, कोई व्यक्ति अगर कुछ काम करने के लिए क्षमता नहीं रखता है, उसको हमें सहयोग देना चाहते हैं, तो मनसा सेवा के द्वारा आप दे सकते हैं। कोई गरीब होता है तो उसको दो धन पैसा देते हैं, सहयोग देते हैं। तो ऐसे जो कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति होता है उसको अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो सूक्ष्म वतन में उसको इमर्ज करके बाबा से सकास लेकर उसको दे सकता है। लेकिन न्यारा प्यारा होकर उस व्यक्ति को या उस ग्रुप को हमें सकास देना है और उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जितनों को हम आगे बढ़ाते हैं उतनों की दुआएं हमें मिलती हैं। सहयोग करने से ऑटोमेटिक वो पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाता है। दूसरी बात, मनसा सेवा का प्रयोग अपने सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। बात 1993 की है, मैं 11 देशों की सेवा में 2.5 मास विदेश में गया था। यूरोप के बाद में मैं अफ्रीका में सेवा पर था, तो एक दिन हम केनिया से बाइकार टांजानिया जा रहे थे। सवेरे 5 बजे ट्रैवलिंग शुरू किया, रात बजे हम पहुंच गए दार ए सलाम, टांजानिया की कैपिटल जो है वहां पहुंच गए। लेकिन जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे थे दिन में 2 बजे जंगल से पार कर रहे थे, चिड़िया की आवाज नहीं थी, अचानक 2 अफ्रीकन पुलिस आ गए रास्ते में और उन्होंने हमारी कार रोक दी। एक साल पहले वही कुछ अफ्रीकन ने अपने भाइयों की कार को रोका था, ऐसे कीले वहां सड़क पर ठोके थे और जैसे ही उस पर से गाड़ी गई पंचर होकर, जैसे ही रुक गई वो आके उन्होंने भाइयों को मारा, खून खून निकला, बहनों को कुछ नहीं किया लेकिन लूट लिया। तो हमने कहा अभी इन्होंने रोक लिया तो अभी ये जरूर कुछ नुकसान पहुंचाएंगे या कुछ हमारे पास है वो लूटेंगे लेंगे। तो वो आनंद भाई जो मधुबन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अभी समर्पित है वो हमारी कार चला रहा था, हम दोनों ही थे, मैं लेफ्ट बाजू में बैठा था, ड्रेस मेरी यही थी और वो पुलिस अपनी भाषा में वो बात कर रहे थे आनंद भाई से। और फिर उन्होंने कहा ओवर स्पीड कार है आपकी, रोको, हमने रोक दिया। फिर जैसे वो आनंद भाई से बात कर रहे थे उस समय मैं बाबा से सकास लाइट माइट ले रहा था और उन पर डाल रहा था कि बाबा इनकी मनसा को चेंज करो ना, हमें कुछ तकलीफ ना दे वो। फिर जैसे वो कार के सामने से मेरे तरफ आए तो कहा ये कौन है, ये स्पिरिचुअल लीडर है, ये कहां जा रहा है, ये दार ए सलाम में जा रहा है, वहां कुछ कॉन्फ्रेंस रखी है, वहां स्पीच देने के लिए जा रहा है। जैसे ही मुझे देखा उसने फिर कहा जाओ जाओ चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, छोड़ दिया। कहने का मतलब है आगे चलकर ऐसी बातें हमारे सामने आएगी, कोई हमें दुख पहुंचाने के लिए अगर समझो आता भी है तो बाबा से सकास लेकर उसको देते हैं तो उसकी मनसा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। आगे चलकर ऐसा माहौल आएगा कि कोई समझो अगर हमें मारने के लिए भी आता है तो भी मार नहीं सकता है। उदाहरण देता हूं, मैं कार चला रहा हूं, रात को कोई रास्ते में आ रहा है तो उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है तो उसको व्हीकल नजर नहीं आता है, ये कार है जीप है क्या है, जीप नहीं व्हीकल नजर नहीं आता है क्योंकि वो लाइट उसकी आंखों पर पड़ रही है। तो ऐसी आगे चलकर हमारी स्थिति पावरफुल होती है और हमारी आत्मा की लाइट प्रखर होती है तो उसकी आंखों पर वो लाइट पड़ेगी तो उसको ये व्हीकल नजर नहीं आएगा, ये शरीर उनको नजर नहीं आएगा। अरे अभी अभी तो मैंने देखा यहां एक व्यक्ति बैठा था, जब वो जाता है उसको मारने के लिए, ये तो लाइट ही है, तो लाइट को थोड़ी मारते हैं, चलो वापस। तो स्वयं की सेफ्टी के लिए ऐसी मनसा सेवा बहुत काम आएगी, समझा। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ी सेवा बाकी है, तत्वों को पावन बनाने की बेहद की सेवा बाकी है। उस सेवा के लिए बाबा योगी बच्चों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि योगी बच्चे ही ऐसे बेहद सेवा में हाथ बटा सकते हैं और इस बेहद सेवा में जितना हम सहयोग देंगे डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हम जितनी चाहें अपने पास जमा कर सकते हैं। बस बाबा से पवित्रता की किरणें लेते रहें और सारे विश्व की ग्लोब पर, सारे तत्वों पर, पांचों तत्वों पर वो पवित्रता की किरणें डालते हैं तो ऑटोमेटिक जो तत्वों में इंप्यूरिटी है वो इंप्यूरिटी बाहर आ जाती है। अभी ये तत्व इंप्योर कैसे होते हैं? जब देवताएं वांग मार्ग में प्रवेश होते हैं उन्होंने विकार जागृत होते हैं तो उनके विकारी संकल्प जो उत्पन्न होते हैं, जो तत्व बने हुए हैं वो एटम से बने हैं, अणु और परमाणु से बने हैं। तो एटम किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीन चीजें होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मूवमेंट हमेशा चलती रहती है और वो जो एटम के जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स के आधार पर निर्भर होती हैं। जब हमारे मन में पवित्र संकल्प चलते हैं सतयुग त्रेतायुग में तो पवित्र संकल्पों का सीधा प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर होता है तो सारे तत्व तमो पावन होते हैं, लेकिन अशुद्ध संकल्प क्रिएट होते ही अशुद्ध संकल्प का सीधा प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर होता है, उसके कारण जो है एटम्स जो है धीरे धीरे इम्प्योर बनते हैं, तत्व धीरे धीरे इम्प्योर होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय मनसा सेवा करते हैं तो बाबा से पवित्र संकल्प लेते हैं, शक्ति लेते हैं और प्रकृति पर डालते हैं तो ऑटोमेटिक उस एटम पर पॉजिटिव रिएक्शन होती है और इसकी इंप्यूरिटी ऑटोमेटिक बाहर आती है और विनाश की प्रक्रिया में हमारा हाथ बढ़ जाता है। तो जितना इस तत्वों को पावन बनाने की सेवा में हम सहयोगी बनते हैं उतना बाबा की दिल की दुआएं, उतनी हमारी कमाई जो है बढ़ती ही जाती है। इस सेवा में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, भाई मेरे एरिया में नहीं आना, कोई नहीं है विश बाउंड्री, कोई नहीं है। बेहद की सेवा इसमें कर सकते हैं, जितनी चाहे कमाई आप कर सकते हैं। तो मनसा सेवा करने वालों को सारे कल्प में मानसिक बीमारी कभी हो नहीं सकती है, ये गारंटी है। जिसने अपने शक्तिशाली मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं को सकास दिया, अनेकों का भला किया, वो कभी भी मानसिक रीति से बीमार नहीं पड़ सकते हैं, मेंटल पेशेंट नहीं बन सकते, यह उनको रिकॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है। इसलिए इस मनसा सेवा में जितना हो सके हम बहुत अच्छी तरह से हाथ बटा सकते हैं और अपने दुआओं के खजाने को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता है उतने हल्के फुल्के हम अनुभव करते हैं, उतना योगाभ्यास हमें सरल होता है। अभी मैं यहां बैठा हूं, मैं उठना चाहता हूं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 10 लोग आकर मुझे उठाते हैं, फूल की तरह उठाते हैं, मुझे मेहनत होगी नहीं होगी? तो दुआओं के हाथ हमें उठाते हैं, हल्का फुल्का अनुभव कराते हैं, जिसके कारण योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर गहन अनुभव होते हैं। यह है दुआओं का चमत्कार। पुरुषार्थ अपनी जगह है और दुआओं का जो खजाना है वो स्वतः ही मदद हमें करने लगता है और पुरुषार्थ में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। समझा? इसलिए मनसा सेवा से बहुत अच्छी तरह से कमाई हम कर सकते हैं। 2-3 साल के बाद आप देखना मनसा सेवा का ही बोलबाला चलेगा। पिछले सीजन में बाबा ने कह दिया, मनस वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, ये बाबा के बोल है। क्योंकि माहौल ऐसा आएगा जो हम करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, उस समय मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। तो अभी वाचा और कर्मणा सेवा का चांस है, खूब चांस लो उसका। आराम हराम है, संगम युग में आराम हराम है। सच्चा आराम किस में है? आ राम। जब बाबा बुद्धि में बैठ जाता है तो सच्चा आराम हमें मिल जाता है ना? एक स्लोगन रखो, संगम युग है अल्लाह की बेला, इस अल्लाह की बेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये अल्लाह की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। पिछले वर्ष बाबा ने कहा, अलबेलेपन को अभी विदाई दो, गुड बाय करो, क्योंकि ये अलबेलापन जो है पुरुषार्थ में बाधा डालता है। इसको अर्ध निंद्रा कहते हैं, कहते हैं सोना माना खोना। तो अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है, इसलिए अलबेलेपन को हमें समाप्त करना है और कमाई करते रहना है। समझा? तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, संबंध से सेवा करो, संपर्क से सेवा करो। जो बाबा ने हमें ऑप्शन दिए हैं, चांसेस दिए हैं, किसको भी मिस नहीं करना है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं तो बाद में हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। कहते मिले मौका तो मारो चौका। हाँ भाई, मौका छोड़ने का नहीं, मिले मौका तो मारो चौका या छक्का सीधा। सबसे मैक्सिमम कमाई उसमें है। माया के साथ क्रिकेट खेलते हैं, वो संकल्प छोड़ती हैं, वो सीधा चौका मारना माना इस साकारी दुनिया से पार चले जाना, बुद्धि को चौका लग गया आपका, और सीधा परम धाम में बुद्धि गई तो छक्का लग गया, सबसे जास्ती कमाई हो गई, बाबा के पास जाके बहुत आपको मिल गया। माया के खिलाड़ी जो हैं आपके बुद्धि को पकड़ने में यार लगते हैं, संकल्प रूपी बॉल को पकड़ने लगेंगे, कमाई करने नहीं देते, वो अपोजिशन है। कितने भी वो अपोजिशन करे, हमने युक्ति से चौका मारना ही है, छक्का मारना ही है, बुद्धि को इस साकारी दुनिया से पार या परम धाम में हमें पहुंचाना है और बाबा के पास से कमाई जास्ती से जास्ती करना है। ठीक है ना? हाँ? अभी मनसा सेवा के बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? माताओं को विशेष एक प्रयोग करना है, डेली करना है। आपका जो परिवार है, जो भी परिवार है, उस परिवार को आपको राइट हैंड के बाजू में इमर्ज करना है सूक्ष्म अवतन में, यहाँ आप हैं और शिव बाबा ब्रह्मा तन में हैं, बाबा से सकाश आ रही हैं, आपके परिवार के सदस्यों पर जा रहे हैं, जैसे आप खाना खिलाकर उनका ध्यान रखती हैं ऐसा स्थूल खाने के साथ ऐसा सूक्ष्म खाना देकर उनकी पालना देना है। इस पालना से क्या होगा, बच्चे शांत हो गए, पति शांत हो गए, जैसा आपका परिवार आप चाहते हैं ऐसा परिवार आपका ढल सकता है। बहुत अच्छी युक्ति है ये, योगदान देना, समझा? बोलो, और कोई बात है कि क्लियर हो गया सबको? केवल आवश्यकता है करने की, अभ्यास करने की। हाँ, जितना करते जाएंगे उतनी हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। टेक्निक समझना बाकी है, उसकी विधि समझना बाकी है। विधि पता चल गई तो फिर जितना मर्जी आप प्रयास करते रहो, सिद्धियां प्राप्त करते रहो, है ना? बोलो, कोई प्रश्न है कि नहीं, कि पूरा करें? शाम के समय हम बहुत अच्छा टॉपिक्स लेंगे और बहुत अच्छा योग का प्रयोग करेंगे, वो सारे भट्टी का क्रीम रहेगा। इसलिए शाम को सेशन को किसी को मिस नहीं करना है। 5 से लेकर 7:30 बजे तक, बराबर 5 बजे आना है और 7:30 बजे तक हम वो 1 घंटा क्लास करेंगे। बाबा कैसे दादी के तन में आते हैं वो विधि भी आपको क्लियर करेंगे और बहुत सुंदर योग का प्रयोग भी हम करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छी अनुभूति बाबा आपको कराएंगे। ओम शांति। ठीक है, और कुछ है तो नहीं किसी का प्रश्न? ये बहन जी क्या पूछ रही हैं, यहाँ के पुरुषार्थ से हमें सतयुग त्रेतायुग में तो मिलता ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी मिलता है क्या? अभी देखो, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। मैं 10 फीट चढ़ गया तो बाद में मुझे क्या करना है? उतरना है। तो सतयुग त्रेतायुग में तो हम उतर जाते हैं, उसके बाद द्वापर कलयुग भी उसमें आता है। अगर आपने 5 ही फीट जंप किया तो आपका 5 फीट का ही दौरा रहेगा वापसी का। इसलिए अंडरस्टूड है, ये 63 जन्मों की नहीं, सारे कल्प की कमाई है। 1 जन्म की नहीं, 21 जन्म की नहीं, 84 जन्मों की ये कमाई है, सारे कल्प की, समझा क्या? इसलिए इसको साधारण रीति से नहीं लेना है। अंतिम घड़ियों में यहां तक मैं पहुंचा हूं, इससे नीचे मैं कभी जा नहीं सकता हूं, ये गारंटी है। 1000 रुपया मेरे पास था, खाते 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 अभी मेरे पास 1 रुपया बच गया, अब इससे नीचे नहीं जा सकता हूं। भिखारी बनकर किसी को मांगूंगा नहीं, अधिकारी बन के रहूंगा। तो ऐसी जो हर एक आत्मा की जो परफेक्शन की डिग्री होती है, हर एक की होती है, अलग अलग होती है। 100 शिव बाबा हैं, 99 ब्रह्मा बाबा हैं, हर एक की परफेक्शन की डिग्री अपनी अपनी होती है। एक बच्चा 33 मार्क्स 100 में से मिलके खुश हो रहा है, पेड़े बांट रहा है, झूम रहा है, मैं तो पास हो गया। अब दूसरा बच्चा 99 मार्क्स मिलके भी रो रहा है, अरे भाई क्यों रो रहा है, मुझे 99 क्यों मिला, क्यों मुझे 100 नहीं मिला, रो रहा है। अभी 33 में जो चल रहा है वो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन की उसकी उतनी है और इसकी डिग्री ऑफ परफेक्शन बहुत हाई है। इसलिए जब तक वहां तक नहीं पहुंचता है तब तक वो प्रयास करता ही रहेगा। 25 वोल्टेज का बल्ब फुल लाइट देता है तो उसका 25 ही परफेक्शन है। किसी का 50 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा। इसलिए हमें पूरा प्रयास करके बाद में भाग्य पर छोड़ना है, ड्रामा पर छोड़ना है, लेकिन प्रयास में थोड़ी भी हमें मार्जिन नहीं छोड़नी है, समझा? इसलिए बाबा कहते 200 नाखून का जोर लगाकर प्रसाद करो, जितनी ऊर्जा आप में है, जितनी क्षमता है, जितना पोटेंशियल है, पूरा यूज करो। फिर बाद में भाग्य पर छोड़ो। पहले भाग्य को नहीं कोसना है, पहले प्रसाद करके फिर भाग्य पर छोड़ना है। समझा? निराकारी स्थिति अशरीर स्थिति अलग अलग है या एक ही है, पूछ रहा है भाई। निराकारी स्थिति अशरीर स्थिति विदेही स्थिति आत्मअभिमानी स्थिति सारी एक ही है, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। अशरीर स्थिति माना आत्मिक स्थिति, लेकिन कईयों का कंफ्यूजन होता है बिंदु स्वरूप स्थिति और बीज रूप स्थिति, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बिंदु रूप स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति अर्थात मैं इस देह रूपी वृक्ष का बीज आत्मा, कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा, और दोनों के बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और बहुत पावरफुल योग की स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं, इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। इसमें दो बातें हैं, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है। बिंदु रूप स्थिति में केवल एक ही पार्ट है आत्मा का अभ्यास का। तो बीज रूप स्थिति को हमें बढ़ाना है, और पावरफुल बीज रूप स्थिति अर्थात ज्वाला स्वरूप स्थिति, ज्वालामुखी योगाभ्यास, उसको कहते हैं पावरफुल बीज रूप स्थिति को, एक्सट्रीमली पावरफुल। समझा? ठीक है, कुछ करना है अभी? अच्छा, भोग लगेगा, हो गया पूरा करें। प्रश्न और कहीं किसी का है? भाई साहब पूछ रहे हैं देह अभिमान और देह का भान एक ही है क्या? इसमें तीन स्टेजेस हैं। देह का भान थोड़ा जास्ती बढ़ता है तो देह का अभिमान, मैं अभिमान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, देह का अभिमान आ गया। और जैसे जैसे बढ़ता है ना तो देह का अहंकार आ गया। ये तीसरी स्टेज, टॉप स्टेज हो गई अहंकार, अहंकार में चूर हूं। ये देह के भान की तीन स्टेजेस हैं। अभी आत्मा की स्टेजेस, आत्मा का भान पहली स्टेप, फिर आत्मा का अभिमान, आत्म अभिमान स्थिति, और आत्मा का अहंकार नहीं कहेंगे, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति कहेंगे। लेकिन आत्मा का अभिमान अर्थात मैं विशेष आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, उसको कहेंगे आत्मा का अभिमान। वो जरूरी है। राजकुमार अपने पैलेस में घूम रहा है, ऐसे मरे मुर्दे की तरह चेहरा होगा होगा उसका, कौन उसको राजकुमार कहेगा? राजकुमार माना अपने चेहरा, उसका बोले, उसका ड्रेस बोले, उसकी चलन बोले, रॉयल्टी, यार ये राजकुमार लगता है। पहचान नहीं, बिना भी उसको नहीं मिले तो भी कहेगा ये तो राजकुमार लगता है, इसका चलन चेहरा, इसका ड्रेस देखो, राजकुमार लग रहा है। तेजी हम हीरो पार्टधारी हैं, इसलिए हमारे चेहरे पर शुद्ध नशा होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन करते हैं भाई, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, मुझे अशुद्ध अहंकार है या शुद्ध नशा है। अब नारायण बनने वाली आत्मा को तो इतना नारायणी नशा चेहरे पर तो होगा, तो थोड़ा सा इसमें अहंकार है। शुद्ध नशा जितना जास्ती होगा उतना वो नम्र चित्त होगा। बाबा सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है, लेकिन हर मुरली के अंत में बाबा के चेहरे की तरफ देखो, याद प्यार नमस्ते, आंखें झुक रही है, सिर झुक रहा है, नमस्ते कर रहा है भगवान, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, और हम बच्चों के सामने लायक बच्चे भी नहीं बने हम, और झुक रहा है नमस्ते, क्यों झुक रहा है बाबा, क्यों नमस्ते कर रहा है, मेरे से सीखो, मैं कितना ऊंचा हूं और कितना नम्र चित्त हूं, मेरे से सीखो। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो नम्र चित्त होता है। तो ये शुद्ध नशा है, और अशुद्ध अहंकार अगर होगा तो उसमें नम्रता नहीं होगी। जो बांबू है ना, अकड़ा हुआ रहेगा, और आम का पेड़ झुका हुआ रहेगा, बहुत पेड़ है कि बहुत उस पर फल होए, लेकिन बांबू अकड़ा हुआ घर्षण करेगा वो दोनों आपस में तो जल जाएंगे, सारे जंगल को भी जला देंगे। इसलिए अशुद्ध अहंकार हमें नहीं होना चाहिए, शुद्ध नशा जरूर होना चाहिए। बल्कि शुद्ध नशे का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अभी सभा में कौन महाराजा कौन राजा बनने वाला है बताऊं? अब आप बुरा नहीं मानो तो बताऊं, कौन प्रजा बनने वाला है, कौन नौकर बनने वाला है, बोलो बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? मेरे पास थर्मामीटर है, डॉक्टर जी पास में वो होता है ना बुखार का, फट से निकाल के भाई लगाओ, हाँ 103 बुखार है, बताऊं? अच्छा पक्का बताऊं? मेरे चेहरे की तरफ देखो, अंतर है कुछ? जेरे जिसकी चेहरे पर रॉयल्टी है, नशा है, बहुत अच्छा है, समझ लो वो राजा महाराजा बनने वाला है। और जिसका चेहरा बहुत पुअर है, बहुत गरीबी चेहरे पर है, अमीरी नहीं गरीबी चेहरे पर है, इसका मतलब प्रजा क्वालिटी है, नौकर चाकर क्वालिटी है। सिंपल टेस्ट है, चेहरे पर वो रूहानी नशा, आंखों में चेहरे वो नशा ऑटोमेटिक दिखाई देता है, तो समझ लो वो राजा महाराजा बनने वाला है, और वो जितना कम है उतना क्वालिटी लो है। सिंपल, इसलिए हमें क्या करना है, अंदर ही अंदर स्वमान में रहना है, और ईश्वरीय नशे के परसेंटेज को नेचुरल बढ़ाना है। बहनों को बुलाओ ना, तीन चार बहनें बैठे, ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए हमें कमरे में भी बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं सोचे हमें कोई नहीं देख रहा है, चेहरा कैसा भी हो तो भी लेगा नहीं, हमें विश्व की स्टेज पर समझना है, हजारों आंखें मुझे देख रही हैं, इसलिए मुझे हमेशा अपने मस्ती में ईश्वरीय नशे में ही रहना है। ब्रह्मा कुमार बने नहीं थे ना तब तक कोई देखता नहीं था, और जब से सेंटर पर आने लगे ना 50 आंखें आपको देख रही है, क्या खा रहे, क्या पहन रहे, क्या चल रहे, सब ढूंढते ढूंढते देखते हैं। वे क्यों होता है ना प्रैक्टिकल, तो इसलिए हमें ईश्वरीय नशे को बढ़ाना है। ओम शांति।